तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या मेहर मुकर्रर हो। ये अब चार मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, कभी सिर्फ निकाह होता है, कभी रुख्सती भी हो जाती है और कभी दूसरी सूरत है। तो अगर इसमें तलाक हो जाए या शौहर फौत हो जाए तो क्या किया जाएगा? फरमाए तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या मेहर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे। ये हक है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी हो लेकिन मेहर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ मेहर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और मेहर ना ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्दे निकाह है नरमी से काम ले और पूरा मेहर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज्यादा मुनासबत रखता है। आपस के मामलात में फियाजी को ना भूलो। शादी अच्छे दिनों में थी तो तोहफे देते थे, शादी की रात तुमने मुंह दिखाई का तोहफा दिया, अब हालात बिगड़ गए तो कहा वो पिछली बातों को भूलो नहीं। ये तुम्हारे बच्चों की माँ भी हो सकती है, ये वही औरत है जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे। हमारे कल्चर में अमूमन क्या होता है कि तलाक के बाद बातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दो लोगों की तलाक नहीं होती, वो दो खानदानों की तलाक होती है, और बाज़ सगे भाई बहन रिश्ता टूटने की वजह से बच्चों का आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं रहते। इस्लाम हमें इन सब चीजों से रोकता है। फरमाए तुम्हारे अमाल को तो अल्लाह ताला खूब देख रहा है। अब जब ऐसे मामले आते हैं ना तो नमाजें बड़ी मुतासिर होती हैं, इसीलिए फरमाए हाफिज अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि कानितीन। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर उस नमाज की जो कि सारी नमाजों के बीच में आती है यानी सलातुल असर, उसकी अहमियत है। हदीस में आता है कि जिसकी नमाज असर जाया होगी गोया कि उसका घर माल बच्चे सब तबाह हो गए। एक बुजुर्ग की बच्ची का इंतकाल हुआ तो लोग उनके पास पुरसे के लिए आए, कहने लगे आज मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, तुम सब अफसोस का नाम करने आ गए और मेरी फलां दिन असर की नमाज कजा हो गई थी, तुम में से कोई मुझसे ताजियत करने नहीं आया। आज आप सोचिए अल्लाह सबको महफूज रखे बच्चों की मौत से और शौहरों की मौत से, लेकिन आप सोचिए कि एक मौत हमारा कितना सुख चैन बर्बाद करती है और कितनी नमाजें हमारी जाया होती हैं। और असर की नमाज वो है कि जो अक्सर बाजारों की जीनत बनती है, और इस वक्त इंसान कहते हैं और भी कर लो, दिन खत्म हो रहा है, अभी शाम हो जाएगी, फिर ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, और बाद में पता चला घर आए तो मगरिब भी कजा हो गई। अल्लाह ताला हमें ऐसी शॉपिंग से बचाए और नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे गुलाम फरमा बरदार खड़े होते हैं। बद अमनी की हालत हो तो फिर पैदल हो या सवार हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मुयसर आ जाए तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जिसने तुमको सिखाया, जिससे पहले तुम न वाकिफ थे। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हो, इनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि एक साल तक इनको ना नफका दिया जाए। ये आयत अब मनसूख है, इससे खूबसूरत आयत आ गई। पहले औरत की इद्दत एक साल की होती थी, औरत को इतना ज्यादा जुल्म करते थे ये लोग, गंदा रखते, खराब रखते और नहाने ना देते, कपड़े ना बदलती। फिर जब औरत पाक होती इद्दत से तो उस जानवर को लाकर, एक परिंदा लाकर उसके जिस्म से रगड़ते। इतनी मुतफन और बदबूदार वो औरत हो चुकी होती थी कि वो परिंदा उसकी बूह से मर जाता। फिर कहते इद्दत से निकली, फिर जानवरों की मेघनी अपने सर के ऊपर से यूं गुजारती। यानी इस तरह के आपको बहुत सारे मुशरिकाना चीजें आज भी दिखेंगी। इस्लाम ने इन सब को छोड़कर क्या कहा, पीछे पड़ चुके हैं 4 महीने 10 दिन। कितनी इज्जत है बेवा की हमारे माशरे में, लेकिन इस्लाम से पहले क्या था कि एक साल तक औरत को घर में रखना की हुक्म था। फरमाए कि एक साल तक इसको ना नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए, फिर अगर वो खुद निकल जाए और अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें, इसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं। अल्लाह ताला सब पर गालिब और इक्तदार रखने वाला है और हकीम व दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो इन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर रुख्सत किया जाए, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। आपको हैरत हो रही है कि इतनी डिटेल से तो नमाज का तरीका नहीं है कुरान में, इतनी डिटेल से तो हज का तरीका नहीं, जितनी डिटेल से आप देखिए कि तलाक और इद्दत का, यहाँ पे ये मौजू पूरा होता है। और आखिरी लफ्ज क्या कह दिया, लअल्लकुम तअक्किलून, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। इससे क्या पता चला कि फैमिली सेटअप को भी इस्लाम के मुताबिक करना पड़ेगा। किसी सोसाइटी में इस्लाम कब आएगा, जब किसी घर में इस्लाम आएगा। आप जितनी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं माशाल्लाह, हर एक घर एक यूनिट है। हम सब के यूनिट जब इस्लाम के मुताबिक होंगे तो हमारे इस मुल्क को जरूरत पड़ेगी कि वो इस्लाम को नाफिज करे। तो इस्लाम का आगाज घर से होता है, इसलिए घरों के नक्शे इंसान को इस्लाम के मुताबिक बनाने, ताकि पूरी दुनिया में ये छोटी छोटी चीजें बड़ी होती जाएं। जैसे वो जूम इन और जूम आउट है ना, उसको जहन में लाइए। आपका घर एक छोटी सी चीज है, फिर दूसरे का घर, फिर तीसरे का। पहले एक घर में इस्लाम आएगा, फिर गली में आएगा, फिर गली से मोहल्ले में, मोहल्ले से शहर, शहर से मुल्क में, और जब मुल्क में आ गया तो उस मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों से इंटरेक्शन करेंगे। तो आप देखिए, चंद सालों की बात है, इस्लाम पूरी दुनिया पे आएगा। उम्मते मुस्लिमा को ये काम करना पड़ेगा। इतना आसान, इसमें एक हथियार नहीं उठेगा, एक गोली नहीं चलेगी, एक ये सब वेपन्स खत्म हो जाएंगे अगर इस्लाम आएगा। मैं एक जुमला बड़े शोर से बोलने लगी हूँ, जिस जगह तक भी आप इसको पेश करें कर दें, अगर उम्मते मुस्लिमा उम्मते वसत का किरदार अदा कर दे, तो एक इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया से बंद हो जाएगी, खत्म होगी, और वो वेपन्स की इंडस्ट्री है। फिर हथियार नहीं उठेंगे, फिर औरतें अपने अखलाक से, मर्द अपने घर से, अपने सोशल एक्शन से लोगों को इस्लाम का हुसन दिखाएंगे। साथ ही साथ हम कलम को आम करेंगे, हम इल्मी तालीम को आम करेंगे, हम कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे, पूरी दुनिया इतने प्यारे तरीके से, मुनज्जम तरीके से मुसलमान हो जाएगी। इसकी गवाही अल्लाह के नबी की जिंदगी से देख लीजिए। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, कैपिटल ऑफ द कुफर, मुशरिकों का गढ़ था मक्का। एक गोली नहीं चली, एक तीर नहीं उठा, एक तलवार नहीं उठी। इजाजत अल्लाह ने दे दी थी कि चंद घड़ियों के लिए अगर मक्का में आपने हथियार उठा लिए, इट्स एग्जेम्प्टेड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चंद लोग जो वाकई इस्लाम के लिए रिबेलियस थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा की, उनके सिवा बाकी सबको माफ कर दिया। घरों में चले जाओ माफ, दरवाजे बंद कर लो माफ, हरम में चले जाओ माफ, अबू सुफियान के घर में चले जाओ माफ। क्यों? इस्लाम अमन सिखाता है। हिरकल जो उस दौर की सुपर पावर थी, उसको अल्लाह के नबी ने जब मजा चखाना चाहा, एक गोली चलने की तो बात छोड़िए, कुछ हुआ ही नहीं। आज जो दुनिया में बारूद और असला इतना आम है, आए दिन खबरें जो हैं वो देखते हैं, और अखबारें काली हुई होती हैं और स्क्रीनें लाल हुई हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि मैंने और आपने इस्लाम का काम करना छोड़ा हुआ। मुझे तो दिन ब दिन इतना एहसास इस चीज का होता है कि हम अपने आप को कैसे माफ करें। हम किस दुनिया में खो गए? हमारे पास हीरे थे, हमने लोगों को देने छोड़ दिए। हमारे पास इतना प्यारा कल्चर है, ये सब पढ़ाकर मेरा फिर दिल इस तरह से भर जाता है कि अल्लाह ताला, आपने तो इतना प्यारा सेटअप दे दिया, और हमने सिर्फ इसलिए नहीं इसको माना कि हमने इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ा। सिर्फ इतनी वजह, हमने इसको बरकत की किताब बनाया, हमने इसको वजीफों की किताब बनाया, लेकिन इस किताब को हिदायत की किताब बना के पढ़ना मुश्किल है। इसीलिए लोगों को ये मुश्किल लगता है, वो कहते नहीं, हम इतना नहीं बैठ सकते, हम घर से नहीं निकल सकते, हम घर बैठ के वजीफा कर लेंगे, हम 5 पारे पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला ये जो हुक्म दे रहे हैं कि लअल्लकुम तअक्किलून, इस पे अमल कब होगा? अकल का भी इस्तेमाल करेंगे, समझ बूझ का भी इस्तेमाल करेंगे, जब इसको समझेंगे तो इस मैसेज को आम करने की जरूरत है कि घर में बैठकर 5 पारे पढ़ने की बजाय एक दफा मिलकर इस कुरान को सुन भी लो, पढ़ भी लो, समझ भी लो, ताकि तुम्हारी अंदर के सवालों का जवाब मिल जाए। अब इसके बाद आखिरी दो रुकू है, यहां मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर देती हूँ। शुरू में ये बात रखी गई थी कि सूरत बकरा मदनी दौर के बिल्कुल आगाज की सूरत है। मदीना में जाकर अब मुसलमानों का मामला बनी इसराइल से पढ़ने वाला था, और जिहाद की इजाजत मिलने वाली थी। अब जब इजाजत मिलती है ना, तो बहुत सारे लोग जो पहले ख्वाहिशों का इजहार कर रहे होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ अब दो वाक्यात सुनाकर अगले पारे में हम देखेंगे, कुछ चीजें आएंगी, तो उसके लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि देखो, अब मदीना जा रहे हो, मदीना में जाने के बाद जंगें होंगी, जिहाद होंगे, लोग तुम्हें ऐसे ही नहीं आने देंगे, तो जरा देख लो कि अगर तुमने ऐसे वक्त में कि जब इस्लाम को फिर जंग की जरूरत हो, तुमने अपने आप को पीछा किया, तो वो कौम जिसने ऐसा किया तो उनके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि ये बनी इसराइल का किस्सा है या किसी पिछली कौम का, आइए देखते हैं। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ, तुमने इन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले, और वो हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, यानी जिस चीज के खदशे से निकले थे वही हो गया। फिर इसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत यह कि अल्लाह ताला इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो। अब बताइए, इस हुक्म का आप क्या करेंगे? निकाल दें, शर्मसार है। बाज लोग इतने अल्लाह से नाराज होते हैं, अल्लाह तुमने ये क्यों जुमला लिखा, ये तो क्यों कहते जंग करो, तो भाई क्यों ना करो, जब दूसरा तुमसे करेगा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। पीछे पड़ चुके कि इस्लाम जंग का आगाज नहीं करता। 13 साल तक परसिक्वेशन को रोकते रहे, सबर किया, पत्थरों खाए, कोयलों पे लिटाए गए, कोई जंग नहीं की। लेकिन अब जब कोई दुश्मन तैयार होकर अपनी सफे बांध कर जदीद हथियारों से लैस होकर आपके शहर के बाहर आके खड़ा हो जाए, तो क्या करो? बुजदिल बन जाओ, आओ हमें खा जाओ। एक कॉकरोच को भी आप मारने लगते हैं तो वो भी जान बचाता है, तो मुसलमान की जान क्या काकड़ों से भी कम है? हाँ, जब वो तुम्हें मारने आएंगे फिर तुम भी उनके मुकाबला करोगे। और खूब जान रखो कि अल्लाह समीउ अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। और जब जंगें होंगी, जब इस्लाम का काम होगा, तो माल की जरूरत होगी। इसीलिए फरमाए, मंजल लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे? सुभान अल्लाह, अल्लाह को कर्ज हसन की जरूरत है? नहीं, ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापिस कर दे। यानी अल्लाह को तो अपने लिए नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। तुम्हारे थोड़े को ज्यादा करके वापस करेगा। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में और बढ़ाना भी, और इसी की तर्फ तुम्हें पलट कर जाना है। यहाँ बात हुई कर्ज हसना की। तीसरा पूरा पारा जो है उसका फर्स्ट निस जो है वो माल के मुतालिक है, और वह माल फी सबीलिल्लाह की बातें होंगी। यहाँ सिर्फ कर्ज हसन की बात समझ लीजिए कि अल्लाह को कर्ज हसन देना। कर्ज क्या होता है कि जिसको इंसान वापस लेता है। हसन क्या है? वो कर्ज जो अहसन बात को फैलाने में जाए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जो माल दिया जाता है उसको कर्ज हसना कहते हैं। दिया तो वो बंदों को ही जाता है, वो तो मुख्तलिफ गिरोहों के हाथों में आता है कि जाओ तुम इससे दीन फैलाओ और दुश्मनों से मामले करो, लेकिन अल्लाह कहता है ये मेरे जिम्मे कर्ज है। क्या पता चला कि आज के दौर में जितना इस्लाम को फैलाने और इस्लाम के दिफा में माल खर्च करने की जरूरत है, इतना तो दूसरों को जरूरत नहीं। देखिए, जलजला आता है, सारी दुनिया उसके मदद करती है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको प्रमोट करते हैं, सोशल वेलफेयर, मरीज, हॉस्पिटल, स्कूल सब बनाते हैं। इस्लाम पे कौन खर्च करेगा? क्या आप सोच सकते हैं कि काफिर इस्लाम को फैलाएंगे? क्या नॉन मुस्लिम कहेंगे कि इस्लाम को फैलाओ और किताबें छापो और सदके जारिया के फंड्स कौन देंगे? मुस्लिम देंगे, क्योंकि उनको फैलाना है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है? अल्लाह ताला हम सबको माफ करे कि हम इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। पीछे भी हमने पढ़ा, ला तुल्कु बेईदी को मिला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। जब उम्मत मुस्लिमा अपने दीन को फैलाने पे माल नहीं लगाती और उसकी बरक्स एक एक शादी पे हजारों लाखों करोड़ों लगता है, तो दुश्मन शेर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस रवैये से बचाए। और बाकी रहती बात कि अल्लाह के रास्ते में देंगे तो काम हो जाएगा, और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यकबिदु व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में और बढ़ाना भी अल्लाह के हाथ में। यानी तुम्हारे पास जो माल है वो है किसका? आज तुम्हें अल्लाह ने अगर ज्यादा माल दिया तो अल्लाह ने दिया है, और अगर किसको कम दिया तो रोने की क्या बात है? शुक्र करो कम है, हिसाब कम होगा। कहा और इसी की तरफ पलट कर जाना है। यानी माल देने से इसलिए डरते हो ना कि दुनिया में क्या करेंगे, तो उस दिन को इंसान अगर सामने रख ले जिस दिन अल्लाह के पास जाना है, तो माल देना बहुत आसान हो जाएगा। फिर फरमाया, तुमने इस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारा ने बनी इसराइल को पेश आया? उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। देखिए, बनी इसराइल के रवैये मुसलमानों के लिए हुज्जत बनाकर यहाँ पेश किए जा रहे हैं। अपने दौरे गुलामी से निकलने के लिए मूसा से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए एक बादशाह बना दें, लेकिन ये बात सिर्फ मुंह की थी। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए तो तुम उससे मुंह फेर लो? होता भी ऐसे ही है। जो लोग बहुत बड़बड़ के कहते हैं ना, ये काम करें वो काम करें, तो दिल में बदगुमानी आने लगती है कि इन्होंने करना कोई नहीं। ये फितरत की बात है। जिन लोगों के कहने पे क्लासेस शुरू होती हैं वो कोई नहीं आते, जिन लोगों के कहने पे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं कुछ अरसे बाद वो प्रोजेक्ट से निकल जाते हैं, क्योंकि इसके रास्ते की कुर्बानियां और इसके रास्ते के अंदर जो मुश्किलात आती है उस पर साबित कदमी बहुत थोड़े लोगों को नसीब होती है। कह रहे हैं नबी को कि बादशाह भेजो, हम दुश्मन से लड़ें। नबी को पता है उम्मतें क्या करती हैं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें, जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। ये है अंदर का चोर। आपको समझ अभी नहीं आएगी, लेकिन जब बाद में पढ़ेंगे तो बात समझ आएगी कि नाम ले रहे थे अल्लाह के रास्ते की, लेकिन दिल में मोहब्बत घरों और बच्चों की थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज भी मुसलमानों की जमीन के टुकड़े 60-70 साल से क्यों नहीं मुसलमानों को मिल रहे? क्योंकि अंदर वजह अल्लाह की जात नहीं, बल्कि अपने घर और अपने बच्चों की मोहब्बत है। अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। जो काम 110% अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह उसको 100% कबूल करेगा। और 1% भी दिल में कह दें दीन का ही काम है, जरा अपना भी फायदा रख लो, चलो दीन का काम है कुछ अपने लिए भी फायदे इसमें ले लो, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं है। फरमाया, मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। इनके नबी ने इनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया। यानी जो कह रहे थे वो हो गया, लेकिन आप देखिएगा जरा इनकी खरमस्तियां क्या कहते हैं। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? अंदर ख्वाहिश ये थी कि हमें बादशाह बनाओ। बस लोग बहुत कहते हैं दूसरों को बड़ा करें करें, लेकिन अंदर ख्वाहिश ये होती है कि जो ही सबको ओहदे मिलेंगे तो सबसे बड़ा ओहदा तो मुझे ही मिल जाएगा। अब उनकी उम्मीद के खिलाफ किसी और को मिला तो एतराज करने लगे, कहने लगे इसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहक हैं, वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं। ये भी एक सोच है कि माल नहीं होगा तो हम आगे आएंगे ही नहीं। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मंतखब किया और इसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई। हाईलाइट कर लीजिए, लीडरशिप क्वालिटीज में ये दो चीजें लाजिम हैं। किसी जगह आप किसी को बड़ा बनाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मुल्क का, किसी मस्जिद का इमाम, कुछ भी, तो जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग हो, पर्सनैलिटी खूबसूरत हो और इल्मी वसत हो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मत मुस्लिमा के दीनी तबके में इल्मी खूबियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों में जिस्मानी खूबियां नहीं है। खूबियों से मुराद है कि उनका पोस्चर, उनका हाल उलिया, उनका बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंट होना नहीं दिखता, जिसकी वजह से फिर वो इतने इल्म के बावजूद बहुत और लोगों को भी दीन की बात बता सकते हैं लेकिन वो बताते नहीं है। तो हमने इन दोनों चीजों में काम करना है, अपने मुसलमान भाई बहनों को जिस्मानी तौर पे भी स्ट्रांग करना है, सोच मजबूत हो, कॉन्फिडेंट हो, उनको यकीन हो कि हम दुनिया की बड़ी से बड़ी जमात के सामने हो, हम बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में भी खड़े कर दिए जाएं तो हम वहां भी इस्लाम का पैगाम देने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस आता ही तौहीद के साथ है। अमर बिन अलास की बात पीछे शायद सुनाई होगी आपको कि कैसे बड़े बादशाह की अदालत में गए और फटे पुराने कपड़े थे और चले गए, कहा ऐसे ही बोलूंगा। लेकिन आज जब हम चंद फोरम्स बड़े बड़े नामों पे जाते हैं, सबसे पहले अपना गेटअप चेंज करते हैं, पहले इस्लाम को बहुत डायल्यूट करते हैं, फिर उन प्लेटफॉर्म्स में जाके हम इस्लाम का क्या पैगाम देंगे। ये वजह है कि दूसरों तक इस्लाम का प्योर मैसेज फिर पहुंच नहीं पाता। फरमाया, अल्लाह को इख्तियार है अपना मुल्क जिसे चाहे दे, अल्लाह बड़ी वसत रखता है और ये सब कुछ इसके इल्म में है। इसके साथ इसके नबी ने इनको ये भी बताया कि अल्लाह की तरफ से इसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है, किसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोटे छोड़े हुए तबरुकात हैं। ये क्या था, जब कौमों पे जवाल तारी होता है ना तो उनके पास हाल में तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो माजी की चंद चीजों को यादगारों के तौर पर रख लेते हैं, किसी म्यूजियम में रख लिया। मसलन जैसे आज मुसलमानों में एक आम रिवाज है, कहीं वो किसी की तलवार, किसी सहाबी की कोई चीज, बाज़बा नबी सल्लम के बाल, आपके जूते रखते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जूतों और उन बालों को अपने पास रखने का फायदा कब होगा, जब हमारी अपनी जिंदगी नबी के मिशन की होगी। बनी इसराइल पे जब जवाल आया, दुश्मन इनके पास आए, तो अब उस जवाल में इनकी ईंट से ईंट बज गई। जाते जाते इन्होंने चंद चीजें जमा कर ली, मूसा अलैहिस्सलाम का सा था, इसी तरह कुछ वो मन था, सलवा था, और वो पानी था, जो भी यानी तबरुकात है, अब उसको ले लेके फिरते रहते। जब कोई दुश्मन सामने आता तो वो ताबूत सकीना सामने रखते, फिर देख के खूब रोते धोते दुआएं करते, अल्लाह उनको फतह देता। एक मौका ऐसा है कि दुश्मन वो संदूक ही उठाकर चले गए, तब से फिर इनका मोरल डाउन हुआ और ये शिकस्तें होने लगी। कहने लगे कि अच्छा ये वापस आएगा, फिर हम तालूत को मान लेते हैं। और वो होगा कैसे, जिसको इस वक्त फरिश्ते लेकर आएंगे, इन नफीसा लिखा, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम मोमिन हो। फिर जब तालूत लश्कर को लेकर चला, ये है अब पारे का आखिरी नुक्ता। याद रखिए, उम्मत मुस्लिमा बनने के लिए अब इस मिसाल को सुनिए और फिर मैं इंशाल्लाह इस पे आखिरी वर्ड्स बोलूंगी। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो इसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। ये दरिया क्या है, दुनिया का दरिया, जो इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है। कौन, فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, जो इससे प्यास ना बुझाए, हाँ एक आध चुल्लू कोई पी ले तो को पी ले, यानी जो इस दुनिया को जरूरत की ले लेगा वो मेरे साथ चलेगा दीन के लिए, और जिसने इस दुनिया में पांव पसार लिए और इसी को अपना उड़ना बिछोना बना लिया वो तो चलेगा नहीं। हुआ क्या हकीकत में, वही हुआ जो होने का डर था। फरमाया, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, सारे ही पी गए पानी, यानी नबी की बात भूल गए, पानी सामने आया वो कौन ना पिए, सब पी गए एक छोटे से गिरोह के सिवा, यानी सब ने पेट भर के पिया, जिन्होंने पिया वो पीछे रह गए, वो थोड़े से साथ चल पड़े। फिर जब तालूत और इसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में तालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन जो ये लोग ये समझते थे, इसको हाईलाइट कीजिएगा, कि इन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है। याद रखिए, दुनिया का सबर या दुनिया पर सबर वही करेगा जिसको ये बात याद रहेगी कि एक दिन अल्लाह से मिलना है। उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ کہ قلیل گروہ وہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، یہ دعا آج کے دور کے مسلمانوں کی زبانوں پہ ہونی چاہیے، قالوا ربنا فرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان عام کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ یہاں یہ دعا اور سورت کے آخر کی دعا دیکھیے گا، دونوں وہ دعائیں ہیں جس کی مسلمانوں کو آج کے دور میں ضرورت ہے۔ یہ صبر کون سا ہے؟ ادھر اللہ کے راستے کا صبر، دنیا کا صبر، قناعت، اپنی ذات پہ تھوڑا خرچ کرو اور باقی جتنا بھی ہے اس کو اللہ کے رستوں میں لگاؤ تاکہ دین پھیلے۔ دیکھیے اسلام کا نظریہ سمجھ لیجیے، اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، امیر ہونا جہنمی ہونا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور دولت مند ہونا منافق ہونا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ دولت مند تھے، محنت کرنے کو اور اس کے حلال کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا، کوئی بری بات نہیں ہے، مسئلہ مال کمانے کا نہیں ہے، اس کے استعمال کا ہے۔ سمپل سی بات یاد رکھیں، اسلام کو مال والے برے نہیں لگتے بلکہ بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو پر وہی پیسہ خرچ کر کے تو آخرت میں وہ اپنے حصے بنائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں اسلام کی جڑوں میں عثمان غنی کا پانی نہ گیا ہوتا مال کا، اور ابو بکر کے گھر کا پانی نہ گیا ہوتا، اور عبد الرحمن بن عوف کا نہ گیا ہوتا، تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ تو کچا چبا جاتے۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ مال کمانے کے بعد اس سے کرتے کیا۔ جب مسلمان مال کو اپنی ضرورت کا لے اور ایکسٹرا مال کو فم بنعمت ربک فحدث کی صورت میں دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے رکھنے، اور اس طرح سے رکھے کہ اس مال کو اتنا عام کر دیں گے ہم کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے تک اللہ کا دین پہنچے، تو ایک تو اس سے اصل مقصد حاصل ہوا اور دوسرا مال میں برکت کتنی ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف کا حال کیا تھا؟ وہ کہتے تھے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بنتی ہے، حالانکہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کے خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ ویسے بھی بینک کرپسیز تو ہو ہی جاتی ہیں، بعض جب اکانومی ڈوبتی ہے تو آج کے دور میں جو کچھ حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، ڈوبنا تو ویسے بھی ہے، تو جب اپنی مرضی سے اللہ کے لیے سارا دے دے، ختم کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس 100 اونٹ آتے تھے اور آپ ایک ہی دن میں ذبح کرا دیتے تھے، 63 اونٹ ہاتھ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ ایسے بھی وقت آئے کہ گھر میں آئے تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، تو کہا سب کچھ دے دیا، اتنا سا گوشت آپ کے لیے بچایا۔ اسلام میں ایسے بھی وقت آئے کہ حضرت عائشہ کے پاس دوسرے ملکوں سے کتنا مال آیا، سارا بانٹ دیا۔ گھر میں رات کو آئے، لونڈی تو بریرہ تھی، کہنے لگی کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی، آج ہم بھی گوشت پکا لیتے۔ کہتی پہلے کیوں نہیں کہا، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ بے نیازی اور یہ سوچ جو ہے، یہ اصل میں انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ اس کے اوپر آپ اور میں غور کریں گے، آپ دیکھیں گے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم مال کماتے ہیں اللہ کے حکم سے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس مال کا اسراف بہت کرتے ہیں۔ جہاں ایک لگتا ہے وہاں 10 لگتے ہیں، اور ہم ایک بلب کی جگہ 10-10 بلب جلاتے ہیں، اور $1 کی جگہ $100 لگاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خواہشوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، شوق میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسلام کھانے سے نہیں روکے گا، پہننے سے نہیں روکے گا، لیکن اسلام ضائع کرنے سے روکے گا۔ یا پھر وہ واقعہ سنا دیتی ہوں، آپ میں سے جو پہلے سے آ رہے ہیں انہوں نے شاید 20 بار میرے منہ سے یہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد طلب کرنے آیا۔ اتفاق سے آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے ان کو اشارہ کیا ادھر چلے جاؤ، وہ عثمان کا گھر ہے، ان سے کچھ طلب کرو۔ وہاں گئے، گھر سے باہر ہی تھے ابھی، تو بیوی شوہر کی باتوں کی آواز آ گئی، اور عثمان غنی ناراض ہو رہے تھے اپنی بیوی سے کہ جب ایک چراغ جلانے سے کام چل سکتا تھا تو تم نے 2 چراغ کیوں جلائے۔ آج کی زبان میں چراغ کو بلب کہہ لیجئے۔ یہ شخص واپس آ گئے، کہنے کہ یہ تو شخص لگتا ہے بہت کنجوس ہے، ایک فالتو بلب جلانے پہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو مجھے کیا دے گا۔ واپس آگے بن مانگے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے لگتا ہے مجھے نہیں دیں گے۔ کہا نہیں، جاؤ مانگو۔ آپ گئے، سلام کیا، بے اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کچھ ضرورت ہے؟ اچھا ٹھہرو، بھی آتا ہوں۔ اندر کی اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر لے آئے، گولڈ کوائنس۔ کہا یہ لے لے۔ آپ اس شخص سے صبر نہ ہوا، کہنے کا مجھے ایک بات تو بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے تھے، اور اب کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے بھائی، وہ چراغ میرے حساب میں ڈلتا، اس کا مجھے کل حساب دینا پڑتا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ یہ واقعہ میں نے اپنے لیے ایک، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک وہ نیویگیٹر بنایا ہوا ہے۔ اپنی ذات پہ $1 لگاتے ہوئے کم از کم 3 دفعہ سوچو، ضرورت ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے، آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، ٹماٹر کی بجائے دہی ڈل سکتا ہے، دھنیا کے بغیر کھانا پک سکتا ہے، اس سوکھ کے یہ $1 پکڑو، جا کے کسی اللہ کے راستے میں ڈال دو۔ जब हम अपनी जात पे वो कहते हैं कि साहूकार बन जाएं और अल्लाह के रास्तों में वो जो कॉइन्स बरस में पड़े हैं जाके जाते हुए डोनेशन में डाल दें, तो फिर ये जुल्म है। साथी कभी ऐसी बातें करते हैं ना और कहते हैं कितना चेंज जमा हो, किधर है ये डोनेशन बॉक्स से निकला सदका जारिया से। ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह तो एक पैनी भी जाया नहीं करता, अगले पारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे उम्मत का मिजाज समझ आता है कि जब अल्लाह का रास्ता अल्लाह का दीन हो तो हम इतनी छोटी छोटी चीजों पे आ जाएं, और जहां अपनी जात पे देना हो तो उसको सजा के संवार के लिफाफों में एनवेलोप्स पे मोती नक्श सितारे लगा के पेश करें कि जी ये शादी का तोहफा कबूल करें। ये सारी बातें क्या हमारा ताल्लुक बताती है, ये मैं बताना चाह रही हूं, मुझे बाकी चीजों से कोई सरोकार नहीं, कि मैं और आप अपना इस्लाम के साथ ताल्लुक देखें। क्या मैं इस्लाम को दी बेस्ट चीज देना चाहती हूँ, या मैं इस्लाम को वो चीजें देना चाहती हूँ कि जिसके साथ इस्लाम दूसरों की नजरों में छोटा होता है। जिस चीज की आपकी नजरों में अहमियत होगी, आप उसके लिए तैयार होंगे, आप उसके लिए सजेंगे, आप उसके लिए घर का बेहतरीन कोना खोलेंगे, आप उसकी कदर करेंगे। शादियों का जमाना होता है तो आप देखिए शादियों पे हम कितना खर्च करते हैं, कितना सजते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है, उसके लिए बड़े बड़े हॉल्स लेते हैं। और दीन के लिए बाज दफा इंसान इतने ज्यादा बुरे दिल के साथ कहते हैं, नहीं घर में दीन का काम किया, नहीं घर खराब होगा, नहीं वो तो मेरे कारपेट खराब होंगे। तो दुआ कीजिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा दीन को कम अज कम उतनी अहमियत देना शुरू हो जाए जितनी के वो दुनिया को देती है, हालांकि दीन इससे बहुत ज्यादा का तकाजा करता है। अब जब कौम ने दुआ मांगी और अल्लाह से का सबर दे यानी कनात दे, अब हुआ क्या, ये मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा के साथ हो जाए। जितनी बात की है अगर मैं और आप इतने ही साथी इस पे अमल कर लेंगे ना, तो अल्लाह का फैसला आसमानों पे लिखा हुआ है, फहजमूहुम बिइज़्निल्लाह, बस उन्होंने शिकस्त दे दी दुश्मन को अल्लाह के हुक्म से। वल्लाही आज दुश्मन इतने स्ट्रांग नहीं है मुसलमानों के, आज मुसलमान जैसे कमजोर है ना तो उसके दुश्मन भी कमजोर है। आज इस्लाम अगर वीक है तो कुफर भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आज बिइज़्निल्लाह की जरूरत है, और अल्लाह का इज़्ज़न उसकी इजाजत का बाती है जब उम्मत रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना, ये साबित कदमी मांगनी पड़ेगी। ये पहला पारा इस मौजू पे खत्म हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा होश करो, फिक्र करो, अपने आप को जमाओ। तुम चाहते हो वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, पहले तो दिल से पूछो जानते हो कि नहीं, चाहते भी हो कि बस एक दुआ मांगते हो बस एक आदतन, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे रहम करना, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे, क्या वाकई चाहते हो, तो फिर तुम्हें दुनिया का सब्र करना पड़ेगा। पहला नुकता नोट कर ले इस दुआ में से, तीन बातें आपको मुझे पारे के एंड पे दी जा रही हैं, ये आपके मेरे तदब्बुर के नुकते हैं इस पारे में से। नंबर एक, दुनिया का सब्र, अल्लाह नहीं चाहता भूखे मरे, अल्लाह नहीं चाहता मुफलस रहे, जाया नहीं करना, खाइए अच्छे से अच्छा खाइए, पहनी अच्छे से अच्छा पहनिए, जाहिर नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, दुनिया को नहीं जलाना, अपनी जात अपनी खुशी के लिए जो मर्जी करें, तो सबर। दूसरी बात साबित कदमी, आपको कोई व्हाइट हाउस में भी बुला ले और वहां मगरिब की अजान आ जाए, है या अल सलाह है या अल फला, तो आपके सॉरी आई नीड टू गो, मुझे आपसे बड़ी जात ने बुला लिया, मुझे नमाज पढ़नी है। ये सबर चाहिए, साबित कदमी। आप सड़कों पर रास्तों में, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, अजान की आवाज आके आप कहते हैं सॉरी ब्रदर मुझे जाने, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। जब दीन पे अमल में साबित कदमी आती है तो तीसरी बात फिर वन सुरना लल कौमिल काफिरी, ये दुआएं मांगनी है। ये तीन काम कर लें आज इस पारे को पढ़ने के बाद, मैं और आप सिर्फ, हम किसी से बाहर खिताब नहीं कर रहे, सिर्फ वो साथी जो आप सुन रहे हैं या घरों से सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। ये तीन काम आज अपने दिल में लिख लें, अपनी जात तक दुनिया को इस तरह रखना है कि जो मेरी जरूरियात को पूरा करे, खूबसूरत तरीके से करे, अच्छे घर बनाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, लेकिन मकसद ना बनाए और इसको दूसरों से शेयरिंग से ना रोकें। और साबित कदमी, दीन को नहीं बेचना कि जहां लगाओ नहीं यहां मैं अब मुस्लिम बन के रहो, हॉज इट पर चलो दीन को बेच के जाते हैं, नहीं उलाइक अल्लज़ी नश्तरव दलाला तबिल होता, जैसे जब चीज कोई जरूरत पड़ती है तो लोग चीजें बेचते हैं ना, तो पहले बेकार चीजें बेचते हैं फिर घर की कीमती चीजें बिकती हैं। इसी तरह जिसके लिए ईमान कीमती है वो कभी ईमान नहीं बेचेगा, जिसके लिए नमाज कीमती है वो कभी नहीं बेचेगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनको नमाज जमात से छोड़ना ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उनको कुफर पे आने की दावत दे दी। मैं नहीं कह रही नमाज छोड़ना, मैं नहीं कह रही नमाज डिले करना, सिर्फ ये करना कि घर में पढ़ लो मस्जिद में ना जाओ। तो जब इस तरह की कमिटमेंट उम्मत की हो जाएगी तो दुश्मन भी देख लेंगे ये रश किस बात का है, वो कहते हैं वो तुम्हें नहीं पता जोहर का वक्त है, वो ये रश किस बात का है, भैया अब असर का वक्त हो गया मुसलमान मस्जिदों में जा रहे हैं, ये क्या वो रश है, वो अब मगरिब हो गई है, वो ये क्या हो गया, ये सब किधर जा रहे हैं, खैर है रात का वक्त है क्या, वो नहीं भाई फिक्र नहीं करो ये मुसलमानों की इशा का वक्त है, और ये क्या हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या हुआ आज के स्कूलों ने अर्ली बुला लिया, नहीं नहीं ये फजर का वक्त है मुसलमान जा रहे हैं। पांच वक्त अगर हमारी रोड्स पे ट्रैफिक ब्लॉक हो, हमारी मस्जिदों के इर्द गिर्द और हमारे तालीमी इदारों के इर्द गिर्द तो आप देखिए जिस राज लोगों को पता है ना कि 7 to 9 रश का टाइम है, ये स्कूल आवर्स हैं, ये ऑफिस आवर्स हैं, माने हुए कि नहीं माने हुए, घर से जज करके निकलते हैं कि इस वक्त जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब आप और मैं और पूरी दुनिया के मुसलमान ये 5 औकात पूरी दुनिया को दिखा देंगे अल्लाह के फैसले फहजमूहुम बिस्मिल्लाह। मैं और आप खुद से नहीं दुनिया में इस्लाम ला सकते, मैं और आप खुद कुछ नहीं, हम सारा माल भी दे देंगे तो तभी होगा जब अल्लाह का इज़्ज़त आएगा, और अल्लाह सिर्फ हमें देखता है। देखिए अल्लाह एक पर मार के सारे दुश्मनों को मरवा सकता है कि नहीं? कौमे लूत पे क्या हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना पर पकड़ के, पर के ऊपर जैसे आप समझिए कुदाल, जैसे कुदाल में मट्टी डाल के उछालते हैं ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा था सदूम नाम की बस्तियों पे, पूरी बस्ती हजरत जिब्राइल के पर पे आ गई, फिर उसको ऊपर ले गए, वहां जाके ऊपर से उल्टा दिया, वल मुतफिकात उनका नाम पड़ गया, उंधाए हुए। क्या अल्लाह आज नहीं कर सकता? पूरी दुनिया में अल्लाह को इस्लाम ठिकाना कोई मुश्किल है? एक फरिश्ता आए और सबको देता जाए और सब हो जाए, लेकिन अल्लाह ये काम मेरे और आपसे लेना चाहता। अल्लाह तो करेगा और करता है, अल्लाह ने तो कह दिया। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह तौबा में पहली दफा वो आयत आएगी, फिर सूरह फत में पढ़ेंगे, फिर सूरह सफ में पढ़ेंगे कि अल्लाह ने इस दीन को गालिब करना है। अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अब आप बताइए पारा ही नहीं पूरा हो रहा हमसे? पारा इस वक्त तो हम अगला भी आधा पढ़ सकते थे, लेकिन उम्मत के हालात नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं आएगी मेरे और आपके इस कुरान पढ़ने से। अबू बकर कुरान पढ़ते थे तो उनके लोग घबराने लगते थे, उनके दिल को कुछ होता था। अबू जाहल ने एक मौके पर अल्लाह के नबी को सताना चाहा, वापस आए तो रंग बदला हुआ था। आज हम पारों पे पारे पढ़ते, रात को भी यही पढ़ा, पहला पारा आपने सुना होगा रात की तरावी में, अब यहां हरम की तरावी लगाएंगे यही पारे हैं, चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन। हमें अल्लाह से ये मदद मांगनी है, ये दुआएं हैं, हर दिन की एक दुआ होगी इंशाल्लाह ताला। आपको कोई एक शीट मिला करेगी तो उसमें दुआएं होंगी इस पारे की, यानी पारा नंबर 2 की, ये दुआ मेरे साथ दोहरा लीजिए ताकि हम सब इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब मैं खामोश होती हूँ, आप लोग 2-3 सेकंड तो आपको 3-4 लगेंगे, आप मानी और इन सारी बातों को जहन में रख के इसको पढ़ें। अब इस तरह से पढ़िए कि आपकी आवाज में दर्द महसूस हो, अर्श को हिलाने वाले अंदाज में इस दुआ को पढ़िए, क्योंकि आज इस उम्मत को इस दुआओं के वजीफों की जरूरत है। वो वजीफे नहीं जो जुबान की नोक से हो, वो वजीफे जो दिलों के तारों को हिलाएं। अब आपकी आवाज में बिल्कुल पढ़ने की तरह नहीं पढ़े, मांगने की तरह, बेगिंग स्टाइल से पढ़िए कि अल्लाह हम मुसलमानों पर रहम कर। ये दुआ मांगिए सब, फिर पढ़िए अल्लाह ताला हमारे लिए फहजमूहुम बिइज़्निल्लाह का फैसला कर दे। क्या हुआ? व कतल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा। आखिरकार अल्लाह की इज्जत से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। मैं अगर आपका शौर बेदार करूं ना, तो दाऊद एक मुस्लिम किरदार है, चरवाहा, एक छोटा सा आम सिपाही थे उस वक्त, नबी तो उस वक्त बाद में बने थे, और जालूत उस वक्त की बड़ी ताकत का सरदार था। अल्लाह ने एक अदना मुसलमान सिपाही से इतना बड़ा काम ले लिया, वजह दुआओं का और उन सारे चीजों का जिस प्रोटोकॉल को उन्होंने लिया। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीजों का चाहा इसको इल्म दिया। अगर इसी तरह अल्लाह इंसानों के गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए से हटाता न रहता तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वह इस तरह फसाद को रोकने का इंतजाम करता है। ये जो जंगें होती हैं या दूसरी चीजें, उसकी हिकमत बता दी कि जो खराब चीजें होती हैं वो पीछे चली जाती हैं और अल्लाह ताला हक को गालिब करता है। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैक बिलहक। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप पर हक के साथ पढ़ रहे हैं, यानी ठीक ठीक हम आपको सुनाते हैं। आपको और मुझे तसल्ली दी जा रही है कि आपने जितना भी वक्त लगाया अभी तक इस कुरान को सीखने पर, ये खुशी महसूस करें कि आपने हक पढ़ा है, बातिल के चर्चे नहीं। लोग कितना कुछ पढ़ते हैं, कभी फिक्शन कभी कुछ, लेकिन आपको एक एक लफ्ज के पढ़ने सुनने का इंशाल्लाह अजर होगा, क्योंकि ये हक लफ्ज हैं। اور ساتھ ہی نبی کو کہہ دیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ تو مرسلین میں سے بھیجے وہ میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اس کو قبول فرمائے. غلطیاں میری طرف اور شیطان کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اصلاح کی توفیق دے، اور اگر کوئی خیر کی چیز نکلی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن دے. پورے بارے میں جو چیزیں چھوٹی موٹی آپ کو دی جا رہی ہیں ای میلز میں، میسیجز میں، اس پہ حد البسا کوشش کریں عمل کی، تو آپ کو دیکھے گا کہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.